നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടികേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദി 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 മൊബൈൽ ആജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാഞ്ചാം സ്കന്ധ കാ പ്രഥമ അധ്യായ ശ്ലോക സംഖ്യ 44 കാ ബാരമേ ചർച്ച കരേംഗേ ഇസ് അധ്യായ കാ നാമ ഹേ മഹാരാജ് പ്രിയവ്രത കാ ചരിത്ര ഭൂ സംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരി ഗിരി വനാദിഭി സീമാ ച ഭൂത നിവൃത്യൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശഃ ഭൂസംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരിദ്ഗിരിവനാദിഭി സീമാ ച ഭൂത നിവൃത്യൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശഃ ഭൂസംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരിദ്ഗിരിവനാദിഭിഃ സീമാ ച ഭൂത നിവൃത്യൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശഃ ഭൂസംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരിദ്ഗിരിവനാദിഭി സീമാ ച ഭൂത നിവൃത്യൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശഃ ഭൂസംസ്ഥാനം കൃതം യേന ഗിരിവനാദിഭി ഭൂതനിവൃത്തൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശഃ ഭൂസംസ്ഥാനം ഗതം യേന സരിദ്ഗിരിവനാദിഭിഃ സീമാ ച ഭൂതനിവൃത്തൈ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭാഗശഃ മാതാജി ഭൂസംസ്ഥാനം പൃഥ്വിക്ക് സ്ഥിതി കൃതം ബനി യേന ജിസ്കെ ദ്വാര സരിത് നദിയോ നദിയോ സേ ഗിരി പർവതോ സേ വന ആദിഭി വന ആദി സേ സീമാ സീമാരേഖായേ ച ഭി ഭൂത വിഭിന്ന രാഷ്ട്രം കാ നിവൃത്യൈ ലഡായി റോക്കനെ കെ ലിയേ ദ്വീപേ ദ്വീപേ വിഭിന്ന ദ്വീപോ മേ വിഭാഗശഃ പൃഥക് പൃഥക് അനുവാദ തഥാ താത്പര്യ ശില പ്രപാദ് ദ്വാര ശില പ്രപാദ് കി വിഭിന്ന ലോകോ മേ പാരസ്പരിക് ജഗഡോ കോ റോക്കനെ കെ ലിയേ മഹാരാജ് പ്രിയവ്രത് നെ നദിയോ പർവ്വതമാലാവോ തഥാ വനോ കെ ദ്വാര രാജ്യോ കി സീമായേ നിർധാരിത കി ജിസ്സേ കോയി എക് ദൂസരെ കി സമ്പത്തി മേ ഘുസ് നാ സകേ താത്പര്യ മഹാരാജ് പ്രിയവ്രത് നെ വിഭിന്ന രാജ്യോ കി സീമായേ അങ്കിത കരനെ കാ ജോ ഉദാഹരണ പ്രസ്തുത കിയാ ഹൈ വോ ആജ് ഭി പാലാ ജാതാ ഹൈ ജൈസേ കി യഹാ സൂചിത കിയാ ഗയാ ഹൈ വിഭിന്ന ജാതിയോ കെ ലോഗ് വിഭിന്ന ഭാഗോ മേ രഹതേ ഹൈ അതഃ ഉൻ ഭാഗോ കി ജിനെ യഹാ ദ്വീപ് കഹാ ഗയാ ഹൈ सीमाएं विभिन्न नदियों वनों तथा पर्वतों द्वारा सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। महाराज पृथ्वी के संबंध में भी ऐसा ही कहा गया। वे अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे। पृथ्वी के पिता अत्यंत पापी थे, इसलिए सर्वप्रथम निषाद नामक एक श्याम पुरुष उत्पन्न हुआ। निषाद जाति को वन में रहने के लिए स्थान मिला, क्योंकि वे जन्म से चोर तथा उचक्के होते हैं। जिस प्रकार पशुओं को विभिन्न जंगलों तथा पहाड़ियों में रखा जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पशु की भांति वहां रहता है। जब तक कृष्ण भावना नहीं जागती, कोई भी मनुष्य सभ्य जीवन नहीं बन सकता दिखा सकता है, क्योंकि वो अपने कर्म तथा गुण प्रभाव के कारण किसी अवस्था में रहने के लिए बाध्य है। यदि मनुष्य मेल पूर्वक तथा शांति से रहना चाहते हैं, तो उन्हें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि से वे उच्चतम मानदंड को कभी भी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने इस भूमंडल को अनेक द्वीपों में इसलिए विभाजित कर दिया, जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांतपूर्वक रह सके और एक दूसरे से झगड़े नहीं। राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना महाराज प्रियव्रत द्वारा किए गए विभागों से ही विकसित हुई है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तगणों को हरे कृष्णा। प्रियव्रत का चरित्र के बारे में इस अध्याय का अंतिम आ रहे हैं, एक श्लोक रह गया। आप सभी पहले से जानते हैं प्रियव्रत महाराज का। प्रियव्रत स्वयंभूमन का ज्येष्ठ पुत्र था। प्रियव्रत उसका भाई था उत्तानपाद। शुरू से ही नारद महर्षि का भगवत ज्ञान मिलने के कारण उसने सांसारिक भोगों से छोड़कर अपने तपस्या करने के लिए वन में चला गया था। उसके पश्चात उत्तानपाद का वंश, उत्तानपाद था ध्रुव महाराज, उनका वंशज जो है इस भूमंडल को शासन करते रहे। मनु का अधीन में कई राजा रहते हैं। मनु जैसे कि विश्व का पूरा चक्रवर्ती, उसके अंदर में कई राजा रहते हैं सब भूमंडल को, कई मंडलों को पालन करने के लिए। जब प्रचेत था तक उत्तानपाद का वंशज चलाते रहे शासन, परंतु जब प्रचेताओं के पश्चात जो कोई भी योग्य क्षत्रिय राजा उस वंशज में नहीं मिला इस भूमंडल को शासन करने के लिए, तब जो है स्वयं मनु स्वयं प्रियव्रत के पास जाकर उनको समझाने का यत्न करते हैं कि ये पुत्र अभी ये तपस्या जो कर रहे हैं छोड़ो, राज का भार संभालो, शासन करना है, क्षेत्रीय का धर्म है राजपालन करना है। परंतु उनका गुरु देवर्षि श्री नारद महर्षि का से ज्ञान मिला था, तो भौतिक इच्छाओं से कोई भी उनकी इच्छा नहीं था, भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति जो होता है सांसारिक चिंता कोई उनको रुचि नहीं था। जब जितने भी स्वयंभू मनु का कहने पर भी जब प्रियव्रत मानने वाला नहीं थे, तिरस्कार कर रहे थे, आदर से पिताजी की आज्ञा किसी भी अवस्था में तिरस्कार नहीं किया जाता है, पिता ये माता पिता का आज्ञा को पालन करना अवश्य होता है। यदि हम तिरस्कार भी करें तो बड़ा सौम्य ढंग से करें, ए चले जाओ, नहीं उनका आदर नहीं है सदा। हम चैतन्य महाप्रभु से हम सीख सकते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए, जब शांतिपुर आ गया नित्यानंद प्रभु का कृपा से, वो बड़ा चरित्र है, जब वहां पर शिची माता भी आ जाती हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं माता मैं तो संन्यास तो ले लिया, यदि आप चाहे तो मैं इधर ही रहूंगा, नवद्वीप में रहूंगा। संन्यासी बनने का माता का आज्ञा को मानने का आवश्यकता नहीं, परंतु चैतन्य महाप्रभु हमारे को शिक्षा दे रहे हैं यहां पर। लेकिन माता बोलते नहीं है, संन्यास लेने का पश्चात यदि अपना गांव में रहोगे ये अपवाद होगा, ये ठीक नहीं, उचित नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा आप जगन्नाथपुर में रहो, ताकि मैं कभी कभी जो जगन्नाथपुर से वैष्णव आते हैं उनसे आपका समाचार मिलेगा, कभी कभी तुम भी यहां आ सकते हो। माता का आदेश के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में रह गया। यह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था संन्यास लेकर वृंदावन में जाना था, परंतु माता का आज्ञा स्वीकार करके वहां पर रह जाना। इसलिए माता पिता का आज्ञा शिरोधार करना अनिवार्य भी है, यदि किसी कारण से नहीं होता, ऐसा तो यदि नहीं बोलना चाहिए, उनको सौम्य ढंग से कहा जाए, तिरस्कार भावन से उनको खेद पहुंचे जैसा शब्द प्रयोग न किया जाए। तो यहां स्वयंभू मनु कितने भी उनको समझा रहे हैं वो नहीं माना, जब ब्रह्मा जी समझ लिया कि ये क्योंकि ये ब्रह्मांड का शासन और विधिधान ठीक चलने का एक उत्तरदायित्व श्री ब्रह्मा जी के ऊपर भी है, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारे। ये तो प्रियव्रत जो अपना पिताजी का मां बातों को नहीं मानने वाला अपना संकल्प पर दृढ़ है, जिसको नारद महर्षि जैसा गुरु से जिसको शिक्षा मिला हो उसका संकल्प कैसा हट सकता उस संकल्प से। तो जब ब्रह्मा जी स्वयं पधारे हैं, अकेला नहीं आते हैं, मरीच महर्षि, वशिष्ठ महर्षि, ऐसा उच्चकोटि महर्षि गणों के समेत ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि पुत्र जो तुम क्षत्रिय है, क्षत्रिय बार धर्म का पालन करना है, ये भगवान की इच्छा है तुम्हारा, तुम जो है इस समय ये वानप्रस्थ आश्रम को छोड़कर अपना गृहस्थ आश्रम में जाओ, राज का भार संभालो, शासन करो, ये भगवान की भी इच्छा है, क्योंकि ये ब्रह्मा जो बोलते हैं वो भगवान की इच्छा से होता है। तो अंत में ब्रह्मा जी का तिरस्कार नहीं करना, पितामह है और श्रेष्ठ है जगत में, इसलिए प्रियव्रत ब्रह्मा जी का बात स्वीकार करके अपने राजभार संभाल लेते हैं। उसके पश्चात जो है एक मनु उनको पुत्र से शादी करके 10 पुत्र का हो जाता है, उनको 3 तो महर्षि बन जाते हैं, 7 को राज भाग करके एक एक को राज संभाल देते। उसके पश्चात सोचते हैं कि इस वंश लो, उसने प्रियव्रत जो है 1.1 खरब वर्षों तक, इंग्लिश में बिलियन बोलते हैं, 1.1 खरब वर्षों तक पालन कर शासन करते हैं। उस समय में बड़ा सोच में आ जाते हैं कि मैं कहां का एक तपस्या करते हुए सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मैं तपस्या कर रहा था, परंतु ऐसे बंधन में कैसे फंस गया मैं, शासन करते हुए पूरा सदा भगवान का भक्ति करते रहे, ऐसी बात नहीं कि पूरा गृहमेदी बन गया, ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम धर्म पूरा पालन करते हुए सदा भगवान का भक्त थे, फिर भी संसार में थोड़ा मोह हो जाता है। प्रेमरत शुद्ध भक्त होते हुए भी एक दिन उनको सोच विचार में आया कि मैं कहां ये बंधन में फंस गया। ये सोचकर पूरा राज्य को और अपना पत्नी को छोड़कर राज्य को तो अपने पुत्रों में भाग करके दे दिया। उसने वन को जाकर जाय श्री राधारास विहार श्री राम लक्ष्मण गौर निताय की जाय, अपना वन में जाकर भगवान का प्राप्ति के लिए साधना करने के लिए वन में चले। यहीं पर आज इस संस्थान में इस श्लोक में बताया गया कि विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों पर्वतमालाओं तथा वनों के द्वारा राजाओं की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस ना सके। अपना राज को इस प्रकार भाग किया है, जबकि वो सभी भाई थे, अपने पिता से अच्छा शिक्षा मिला, झगड़ा नहीं करने वाले। फिर भी भौतिक जगत में झगड़ा कब होगा कोई नहीं जानता, इसलिए प्रियव्रत महाराज ने समस्त भूमंडल को सात भाग करके अपने पुत्रों को दे दिया। आगे सातों का जो 19वां अध्याय और 20वां अध्याय में आगे पढ़ेंगे, भूमंडल का कौन सा मंडल का कौन प्रियव्रत का पुत्र राज करते थे आगे आ जाएगा, इसमें भी आगे मिलेंगे आपको। तो उसके पश्चात राज किस प्रकार भाग करना चाहिए, इसमें प्रपात बोलते हैं इसी का प्रियव्रत को जो ने विभिन्न राज्यों की सीमाएं अंकित करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो आज भी पाला जाता है। थोड़ा सा ये आज का इस पूर्ण अवतार अमल में नहीं लाते हैं, जो प्रियव्रत ने राज्यों का भाग किसके लिए था, बॉर्डर क्या किया था, सरहद था नदियों या पर्वताएं, नदी है ना। विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों पर्वतमालाओं तथा वनों द्वारा राजाओं की सीमाएं बनाए। यदि दो राज के बीच में सीमा यदि नदी होता है कोई झगड़ा नहीं है, एक नदी के एक पार आप एक का राज्य, दूसरा पार दूसरों का राज्य। यदि नदी किसी का राज्य में चलता है तो नदी जो है उस राजा का अधिकार में आ गया, और नदी का पानी दूसरा राज्य में जा रही है वहां पर तो रुकेगा नहीं है। जितने भी नदी है विश्व में समस्त नदी जाकर समुद्र में मिलना, अब जानते हैं ज्योग्राफी, ऐसा कोई नदी है जो समुद्र में नहीं मिलता, एक नदी है अफ्रीका में है वो ओकवांगा बोलते हैं उस नदी को, वो बहुत दूर से कई देशों में तीन देशों से आकर निकलकर आकर अफ्रीका में बोटस्वाना में आकर वहां पर रुक जाते हैं। और वो नदी का जैसा हमारा गंगा नदी पेरेनियल रिवर कहा जाता है, उस नदी भी कभी भी समाप्त नहीं होता, बहुत गहरा है, बड़ा वेग भी है उस नदी का, और इतना पानी होता है ऐसे जमीन में चला जाता है, कहां जाता है भगवान जाने, वो अभी भी वही है, वही एक नदी है पूरा हमारा अर्थ प्लैनेट विश्व भूमंडल में, वो कि एक ही नदी है समुद्र में नहीं मिलता, आकर जमीन में मिल जाता है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी नदी है समुद्र में मिलता है। इसको देखने के लिए अफ्रीका में बहुत सारे जवान वगैरह टूरिस्ट काफी आते हैं उसको देखने के लिए, कि एक विचित्र है ये तो। तो ये सभी नदी इसे यदि इस प्रकार हमारे को राष्ट्र का सीमाएं नदी या कोई पर्वतों से करें कोई आगे झगड़ा नहीं रहेगा। इसलिए प्रपात भी लिखते आज भी जो कहते हैं कि आजकल आज भी जो सीमाओं का रेखा बनाने का उदाहरण लिया है प्रियव्रत महाराज का से लिया है। प्रपाद आगे कहते हैं महाराज पृथ्वी के संबंध में भी ऐसा ही कहा गया है, वे अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे। अब सभी को मालूम है पृथ्वी महाराज कैसा उनका उत्पन्न हुआ था, उनके पिताजी वेन महाराज महापापी थे, अत्यंत पापी और क्रूर कर्मी थे। महर्षिगण उनको समझाने के लिए यत्न किया था परंतु वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, उनको उल्टा महर्षियों की ताड़ना का शुरू किया था। महर्षिगण को अपना कुसम आकर उसको अपना मंत्रों के प्रभाव से उसको भस्म कर देते, भस्म नहीं उसको मृत कर देते हैं। परंतु राज कोई राजा नहीं रहने से राज में कोई अधिकारी नहीं है, चोर डकैती सब बढ़ जाते हैं। जब ऐसा अराजकता जब बढ़ने लगा ना, महर्षि लोग सोचा भाई इनका कुछ उपाय, राजा तो होना चाहिए। तो वे महाराज का मृत शरीर को मंथन से जब पैर को उर भाग को जब मंथन करे तो उससे उनको एक बड़ा काला श्याम वर्ण के व्यक्ति का उत्पन्न हुआ। उनको देखकर उसको निषाद का नाम देकर, निषाद था वो, उनको महर्षि लोग बोले जाओ तुम पापी है, क्योंकि महाराज वेन महाराज के जितने पाप कृत्यों का फल स्वरूप उसने उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो पापी कर्म का था, वो वन में भेज दिया। तो उनका वास जो है निषाद, इसलिए प्रपाद कहते हैं कि निषाद जो सदा वन में रहते हैं, उनको अलग अलोकेट किया है और वो सदा पाप कर, जानवरों को मारना आज भी देखे, आदि जाती है जितने भी होते हैं उनका जीव का चलता, पशुओं को मारना यदि कभी कभी चोरियां भी होता है, तो इसलिए उचक्के रहते हैं। प्रपाद लिखते हैं उचक्के, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रोग्स बोलते हैं उसको, सब प्रकार का पाप कर्म करने के तैयार रहते हैं। उसके पश्चात जो है जब उनका शरीर का बाजुओं को मंथन करने लगे तो भगवान स्वयं पृथ्वी महाराज का अवतार, भगवान का अवतार है पृथ्वी महाराज का उत्पन्न हुआ था। तो यहां प्रपाद हमें कहते हैं कि इसलिए निषाद जो पापकर्मी था, निषाद जाति को वन में रहने के लिए स्थान मिला, क्योंकि वे जन्म से चोर तथा उच्चक होते हैं। जिस प्रकार पशुओं को विभिन्न जंगलों तथा पहाड़ियों में रखा जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पशु की भांति वहां रहते हैं। जो निषाद होते हैं पशुओं का और उनमें ज्यादा अंतर नहीं रहता। जब तक कृष्ण भावना नहीं जागती कोई भी मनुष्य सभ्य जीवन नहीं बिता सकता है। सभ्य पुरुष वही है, चाहे शहर में भी मनुष्य रहे, सभ्यता नहीं रहता हो तो पशुओं में उनमें कोई अंतर नहीं है। पशुओं का क्या है, पशु कई अवस्था में पशु मनुष्यों से भी अच्छे हैं। पशु को जो उनके लिए निर्धारित आहार है वही खाता है, उनके लिए निर्धारित नहीं है वो कभी नहीं कहे। जो शाकाहारी पशु है किसी भी अवस्था में मांस नहीं खाता है, खाता है क्या? बंदर का भी मांस खाते हुए देखा, हाथी मांस खाते हुए देखा आप, हिप्पोपोटामस भी आप लोग देखा नहीं होगा, भारत में नहीं है, सुने अवश्य होंगे, अफ्रीका में ज्यादा आप हिप्पोपोटामस मिलते हैं। ये नहीं मिले आपको, अपना जो निर्धारित आहार है उसको छोड़कर नहीं खाता। परंतु मनुष्य क्या है, सब खाने को तैयार है। मनुष्य जाति में यह है कि ऐसा कोई वस्तु नहीं वो नहीं खाता है। अपने ही देश के पूर्व जामी नागालैंड वगैरह जाइए, उधर तो काला कुत्ता महा उनको तो बड़ा स्वीट होता है, आपको काला कुत्ता नहीं मिलेगा उधर। कुत्ते का मांस बहुत बड़ा माना जाता है वहां, उसमें भी जो कुत्ते काला काला रंग का कुत्ते होता है उसको बोलते ये तो महा है, कहा यह गलती से कहीं काला कुत्ता गया नागालैंड उस एरिया में पूर्व भाग में, बस उसका स्वाहा हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, कोई ना कोई चोरी करेंगे उसको काट देंगे। और थोड़ा आगे जाइए सांप वगैरह समस्त सर्पों को खा लेते हैं। ऐसे और भी आगे जाइए, हमारा देश पार करके जाइए, ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं छोड़ते हैं। बिच्छू कहेंगे, कॉकरोच को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं कॉकरोच, सभी जानते हैं ना कॉकरोच, उसको भी खाने वाले मिलेंगे। मतलब मनुष्य के लिए कोई निर्धारित नहीं रहा, भगवान की तरफ से नियम बनाया मनुष्य क्या खाना चाहिए, परंतु मनुष्य ऐसा प्रकृति है, थोड़ा स्वतंत्रता होने के कारण जो है वो सभी अनशन काम करने के तैयार है। कई अवस्था में मनुष्य पशुओं से भी गाय गुजरा हो जाता है। प्रभाव लिखते हैं कि जो सभ्य पुरुष तभी बन सकते जब कृष्ण भावना में रहता है, अन्यथा नहीं। जब भगवान का कृष्ण भावना नहीं है तब तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीन पशुभिर समाना। जब धर्म के बारे में तब सोचते ना, सभ्यता तभी आया है किसी मनुष्य में जब धर्म के बारे में सोचेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे पाप और पुण्य से, पाप से भय करने लगेगा। जब धर्म के बारे में सोचना ही नहीं, उसके पाप से क्या डर रहना। धर्म के बारे में नहीं सोचता है तो वो हर प्रकार का कुकर्म करने के लिए तैयार रहता है। केवल उनका इच्छा एक ही रहता है, किस प्रकार हमारा को इंद्रिय तृप्ति करना, उसके लिए हर प्रकार को कर्म करने के लिए। नूनम प्रमत्त कुरते विकर्मा, जब उसने सोचा कि इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, तब तो हर एक को कर्म करेगा। परंतु जब धर्म के बारे में सोचने लगेंगे, वो सोचेंगे भाई कुकर्म करना चाहिए नहीं चाहिए करें। जब तक धर्म के बारे में नहीं सोचेगा, वो मनुष्य देह पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दो पैर का पशु है वो, बस उतना ही। आप देख सकते हैं आजकल भी मनुष्य में कितना क्रूरता आ रहा। और जब वही मनुष्य जितने भी क्रूर हो, जब धर्म के बारे में सोचने लगेंगे, कृष्ण भावनामृत में आएंगे, तो तुरंत ही उसमें बदली मिलेगा आपको, सोचने लगेगा। जैसे जैसे भक्तों का संगत लेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। परिवर्तन सबसे पहले क्या परिवर्तन है, उस सौम्य स्वभाव को हो जाएगा। इसलिए प्रपद भागवत में भगवतम हर जगह बार बार लिखते हैं, जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें नहीं चलते हैं, तब तक ना शांति हो सकता है, नहीं होगा, संभव ही नहीं है। भक्तों में सबसे बड़े जैसे भक्ति मार्ग में आते, आप सभी अनुभव करते किए हैं, अपना आपको सोच सकते हैं, भक्ति भाव में सबसे पहले क्या, हम सौम्य हो जाते हैं, किसी को कटवचन कहने का मन नहीं करता, किसी से बात करना भी है बड़ा सौम्य प्रकार से बात करेंगे। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे भक्ति मार्ग में क्या है, किसी द्वेष नहीं रहेगा। भगवान स्वयं बोलते हैं भक्तों का गुण से, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करण ये वचा। भक्तों का सबसे पहले गुण है अद्वेष्टा, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना चाहिए, केवल मनुष्य ने, सर्वभूतानां भगवान कहते हैं। जब तक यदि हम बोलते हैं हम कृष्ण भावना में हैं, परंतु सब दूसरे प्राणी से द्वेष कर रहे हैं, तो फिर तो हमारा में कुछ लोभ है। भक्ति मार्ग में ये बाधा है, यदि किसी प्राणी से हम द्वेष करने लगे तो द्वेष नहीं करना चाहिए, यहां उसके ऊपर करना करो, भगवान करुणा ये वचा। जो व्यक्ति किसी कारण से अपना पथ को छोड़कर इस प्रकार चल कुकर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर करुणा दिखाकर भगवान का नाम देने के यत्न करते हैं। भक्ति इसलिए तो बाहर जाकर प्रचार करते हैं, क्योंकि ऐसा जो कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, जो तमोगुण प्रवृत्ति में रहते हैं, उनके लिए भगवान का भक्ति साधारणता नहीं मिलता, उनका योग्यता नहीं है। भगवान श्रीहरि का भक्ति मिलने के लिए मनुष्य को सतोगुण में रहना चाहिए, थोड़ा सा रजोगुण हो सकता है, तमोगुण में उनको भगवान हरि का भक्ति नहीं मिल सकता। परंतु भक्ति भक्तों का कृपा से वो भक्ति मिल सकता है। तमोगुण प्रवृत्ति भी, जैसे कि आप प्रचार के लिए जाते हैं बाहर, कोई ऐसा व्यक्ति मिला पूरा तमोगुण प्रवृत्ति वाला, फिर भी आप उसको कहना होगा करके संकीर्तन में जा रहे हैं, अभी माराथन में भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, देखिए प्रभु ये खरीदो ये करीदो, ये आप लीजिए, इसको पढ़ो, आपके जीवन में ये बदल जाएगा, अच्छा आप कृपा कर रहे हैं, आप ऐसे कीजिए संडे को हमारा मंदिर में आइए, विशेष प्रोग्राम रहता है, उसके बाद प्रसाद वितरण भी हो जाता है, आप आइए। जैसे जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, वैसे ही उनको आपका संगत मिल रहा है। भक्तों का संगत का प्रभाव से उनका कई पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है, और साथ साथ वो है उसके कर्म का प्रभाव, आपका प्रभाव से यदि वो मान भी लिया मंदिर में आ जाएगा। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, श्री हरि का दर्शन कर लिया, भगवान कृष्ण का दर्शन किया, वहां पापों से मुक्त हो गए। और साथ साथ मंदिर में आते तो क्या सुनते हैं, कोई राजनीति बात तो नहीं सुनते, क्रिकेट क्या है सुनते हैं क्या मंदिर में आएगा, कोई क्रिकेट स्कोर सुनते हैं या हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, हरे कृष्ण मंत्र ही है। जब हरे कृष्ण मंत्र का सुना उसके तो भाग्य उदय हो गया। अज्ञानाद अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम है, संकीर्त तमभम पुंसा दही दीदो यथान अला। विष्णु पार्षद छठवां स्कंद में कहते हैं अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, जो यदि कोई जानते हुए या अनजान से भी भगवान श्री कृष्ण का श्रीहरि का उत्तम श्लोक जिससे उनका नाम सुनते हैं या कहते हैं हा? उनके समस्त पाप दहे दे दो यथान अला अधे दो यथान अधे दो मतलब है पाप कर्म भस्म हो जाते। जिस प्रकार दे संख्या अघम, अघम का मतलब पाप कर्म है, दहे धन होना, अधे दो सूखा घास, दहे दो यथान अला जिस प्रकार सूखा घास अग्नि के पास जाने से क्या हो जाता है भस्म हो जाता नहीं, इसी प्रकार जिस प्रकार सूखा घास अग्नि के पास जाने से भस्म हो जाता है, इसी प्रकार जो है जान से या अनजाने से भी भगवान श्री कृष्ण का श्री हरि का नाम सुनने से उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता, भस्म हो जाता है। पाप नष्ट हो गया तुरंत उसको सतोगुण माने का अवसर मिल गया। अब पाप नष्ट हो गया तो उसका मन जो है दिव्य हो जाता है, उसमें भगवान का नाम लेने के लिए इच्छा हो जाता है, धीरे धीरे भगवान भक्तों का संगत करते रहेगा वो भक्त बन जाएगा। यदि वो भगवान का भक्ति में नहीं आता, मंदिर में नहीं आता, वो अपने ही कुकर्म से रह सकता। आप सभी अनुभव किया होगा, आप सभी प्रचार के लिए जाते हैं बॉम्बे में, इस बात को कई कई हर जगह देख सकते हैं कि महापाप कर्म कभी मंदिर जाने का विचार भी नहीं करता, परंतु भगवान का भक्तों को कृपा से वो भक्त बन जाते हैं। भगवान का अन्यथा जो रजो पूर्णता रजोगुण है, पूर्णता समोगुण है, उनके लिए भगवान श्रीहरि का भक्ति में रुचि नहीं रहता, वो अन्य देवताओं का भक्त बन सकता है। क्योंकि रजोगुण का प्रवृत्ति क्या, कामना है, वो चाहिए चाहिए वो चाहिए, वो केवल और अन्य देवताओं का भक्त बन सकता है, परंतु श्रीहरि का भक्त नहीं बन सकता। श्रीहरि का भक्त बनना है तो थोड़ा सतोगुण चाहिए, जब सतोगुण में रहेगा पाप कर्म कैसे करेगा, तपोगुण जो सतोगुण में रहता है उसको पाप कर्म करने के मन ही नहीं करेगा। केवल है सब सतोगुण में आने का भी कैसा, केवल कृष्ण भावना में आने का कारण, बस और कुछ नहीं। जब कृष्ण भावना में आ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, उनमें समस्त गुण आ जाता है। इससे जब भगवान का समस्त सर्वे समस्त सर्वे समासते यशास भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे समासते समासते सुरा देवताओं का समस्त ज्ञान वैराग्य और सभी भक्तों का आ जाता है। भगवान अकिंचन कृष्ण का भक्ति करने से समस्त ज्ञान मिल गया, फिर उनको तो यदि मनुष्य मृत्यु मेल पूर्वक तथा शांति से रहना चाहते हैं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि से वो उच्चतम मानदंड को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक देहात्म बुद्धि से कहने का है शरीर के साथ संबंध करने से मैं उस राष्ट्र का हूं, मैं इस भाषा का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इंडिया का हूं, मैं पाकिस्तान का हूं, मैं वो है, ये सभी जो देहात्म बुद्धि से जब तक रहेगा एक दूसरे प्रति द्वेष भाव पैदा होता रहेगा। परंतु भक्त जो है देहात्म बुद्धि से परे रहते हैं, फिर भक्त बनने के बाद भी हम शरीर से देहात्म बुद्धि से रहें फिर तो कष्ट है उसमें। इसलिए आप देख सकते हैं मायापुर में जब गौर पूर्णिमा के समय में जो गाय जाते हैं देखते हैं समस्त देशों का भक्त उधर मिलेंगे, सभी बड़ा प्रेम से रहते हैं। और वही जब दूसरे देशों में दूसरा चाइनीज वगैरह कोई आ जाएंगे बाहर वालों से मिले कोई बात करने को तैयार नहीं रहता, परंतु जब भक्त है सभी प्रेम से बात करेंगे। भक्त देहात्म बुद्धि से परे हो जाते हैं, परंतु बाहरी लोग जो है संसारिक में देहात्म बुद्धि से रहने के कारण जो ये तो चाइनीज है, मैं तो इंडियन हूं, हम दोनों के देश में झगड़ा है, हम इससे कैसा बात करें। तो परंतु भक्त में ये भावना नहीं रहता। भक्त जो है हर एक हृदय में वास्तवी हर भगवान को देखते हैं, वो आज शरीर को नहीं देखता है। इसलिए प्रभात इसमें जोर देते हैं कि शांति से शांति कब मिलेगा, केवल ध्यान बुद्धि से। उच्चतम मानदंड कभी नहीं प्राप्त किया सकता। महाराज प्रियव्रत ने इस भूमंडल को अनेक द्वीपों में, जय श्री राधा रास विहार की जाए, गौनिताय की जाए, इस भूमंडल को अनेक द्वीपों में इसलिए विभाजित कर दिया जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांतिपूर्वक रह सके। इस बात को आजकल हम देखते हैं कि जो भी राष्ट्र का विभाजन होता है केवल शांति रखने के लिए, दूसरा डेवलपमेंट के लिए भी। ज्यादा राज्य बहुत बड़ा हो जाता तब वो शासन करना भी मुश्किल है, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। परंतु राष्ट्र छोटा होता है डेवलपमेंट आसान है। जिस प्रकार तो जो कृष्ण भावना अमृत में रहेंगे, भगवान के बारे में भक्ति मिले, ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से जो अध्यात्म बुद्धि से परे हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अंत में, जब भगवान श्री कृष्ण धरा मंडल को छोड़कर अपना गोलोक धाम जाने के लिए सोचा था, तैयार थे, जब उद्धव जाकर पूछते हैं अपना ब्रह्म ज्ञान का लिए, भगवान कहते हैं धर्म क्या है, धर्म के बारे में, धर्म वो है जो भगवान का भक्ति देता है। बोलते हैं धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्त, धर्म वो है जो मेरा प्रति भक्ति उत्पन्न कर देता है। आचार उस धर्म का आचरण कर रहे हैं, परंतु भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता। स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। जो स्वधर्म करने का मतलब है केवल क्या है, भगवान का हरितोषणम प्रीति के लिए। भगवान भी ये कहते हैं भागवत में कि धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त। और ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है, भगवान कहते हैं ज्ञान, बोलते हैं ज्ञान मिला। ज्ञान का मतलब है सर्वव्यापी भगवान को देखना है, वही ज्ञान है। पूरा ज्ञान मिला परंतु सर्वव्यापी भगवान को नहीं देखा, इसका अर्थ क्या होता है, हम किसी से द्वेष नहीं करें। भक्त का काम है, भक्त हर एक प्राणी में उनके हृदय में वास भगवान को देखना है। यदि हम नहीं देखे, अध्यात्म बुद्धि में रहे, फिर तो ज्ञान नहीं है। और वैराग्य के बारे में भगवान कहते हैं गुणेश असंग वैराग्यम। जो वैराग्य है भक्तों के लिए जरूरी है। वैराग्य का मतलब क्या है, भौतिक इच्छाओं को भोगने की इच्छा से दूर होना है। यदि भौतिक भक्त बनने के पश्चात भी कृष्ण भावना में रहते हुए भी फिर भी भौतिक इच्छाओं को भोगने का जो इच्छा रहता है, फिर तो ये बाधा है। वो भौतिक इच्छाओं को भोगने का जो इच्छा है वही हमारा जन्म मृत्यु का कारण है। कर्मात्मकम ये न शरीर बंध है, और समस्त उनको और समस्त जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य के बारे में भगवान बोलते हैं ऐश्वर्य च अनिमादि भी। ऐश्वर्य क्या है, समस्त सिद्धियां जिसमें से अनिमा गरिमा महिमा प्राप्ति सिद्धि की है, अष्ट सिद्धि है, उसके बाद 14 गौण सिद्धियां, सब सिद्धियों के बारे में जानना है जिसको ये प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म और भक्तों के लिए धर्म का पालन भी जरूरी है। जब तक धर्म का पालन नहीं करते हैं भगवान का भक्ति नहीं आएगा। भगवान स्वयं भगवद गीता में भागवतम एवं का सा वै पुंस परो धर्म यथो भक्ति रजोच्चते अहित की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थे। यदि वो भक्ति करते हुए भगवान अधोच्छेद के प्रति भक्ति नहीं प्रेम नहीं हुआ तो धर्म नहीं हुआ। धर्म का उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों में प्रीति होना है। तो इसलिए प्रपाद भी इसमें अंत में भी लिखते हैं, शुरू में बोलते हैं जब तक कृष्ण भावनाम में नहीं रहता प्राणी तब तक जो है विश्व में शांति नहीं हो सकता। कृष्ण भावना में नहीं रहने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से रहना। और कृष्ण भावनाओं के प्रचार करने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रपाद हमेशा कहते हैं कि आप जाकर किसी को प्रीच करके आओगे, कुछ दिन के बाद वो भूल जाएगा, परंतु आप किताब पुस्तकों को वितरण करेंगे और वो लेकर कभी ना कभी पढ़ेगा, क्योंकि वो खरीद लिया है, आपको कुछ डोनेशन भी दिया है, ले घर ले जाएगा, कभी पढ़ेगा, उस पढ़ने से उनका लाभ हो जाएगा। पुस्तकों के वितरण से जो प्रपाद को प्रीति है, प्रपाद को संतुष्ट करना है केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। कई दफा प्रपाद लिखे हैं, अपना लेटर्स में भी लिखे हैं और भागवत व्याख्या में भी लिखते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन यदि मेरे को आप संतुष्ट करना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। भक्तों का एक ही लक्ष्य चाहिए हमें, किस प्रकार हमारा आचार्य हमारे गुरु को संतृप्त में रखना है। गुरु महाराज आते हैं, हम क्या करते हैं? पहले जाकर उनके चरण छू लेते हैं। नहीं, चरण छूने का अर्थ क्या है? मतलब आपके द्वारा जो दिया हुआ समस्त आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, अपना शरणा आपका शरणागत है। हम शरणागत वही है जो उनका द्वारा दिया हुआ समस्त आदेशों को पालन करना है। श्री गुरु चरणामृत निर्भर सेवा संसाराद अतिराद भव मुक्त। संसार से समस्त चीजों से मुक्त होना चाहते हैं, केवल गुरु का चरण सेवा करना है। सेन्द्रिय मानस नियमादेवम, जब समस्त इंद्रियों को अपना अधीन करके सेवा करते हैं क्या होगा? पश्यत निदेव हृदयस्तम देवम। जब गुरु का आज्ञा पूरा स्वीकार करके गुरु का सेवा करें, गुरु का अधीन में रहकर गुरु को संतृप्त करने के लिए हम चर्या कोई भी करेंगे, तब जाकर हमारे भगवान का दर्शन हो सकता है। गुरु को संतृप्त करने का अर्थ है भगवान। गुरु यदि प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है। एक बार प्रपाद को एक शिष्य पूछा था, पढ़ा है, मैं तो प्रपाद को देखा नहीं है, कि एक शिष्य बोलते हैं भगवद्गीता में व्याख्या में आ जाता कि प्रपाद ऑलवेज आप हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो भगवान को प्रसन्न होने चाहिए, हमें क्या मालूम है कि भगवान प्रसन्न है या नहीं है। प्रपाद कहते हैं यदि तुम्हारा गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। हम शिष्यों का हमारा एक ही काम है, हम किस प्रकार भगवान को प्रसन्न है नहीं, हम किस प्रकार गुरु का आज्ञा स्वीकार करके गुरु को प्रसन्न किया जाए। यदि गुरु को प्रसन्न करें हरि प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न नहीं हरि प्रसन्न नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो यदि हम प्रपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रपाद का जो सबसे प्रीत कार्य है वही करना चाहिए, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार। आप यहीं अभी मैराथन में जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, केवल किताब देंगे या कुछ बोलेंगे भी, कुछ प्रीच भी करेंगे ना? ऐसा तो किताब ले भाई, अंदर क्या है हमें मालूम नहीं, कोई लेगा? उससे पहले आप पढ़ोगे, जब पढ़ेंगे प्रपाद के साथ हम वाणी से सहयोग कर रहे हैं, और जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं कि उस पुस्तक में क्या है, भगवान का लीलाओं के बारे में बताएंगे, तो प्रचार हो रहा, उनका उद्धार हो रहा। और ऐसे कार्य से श्रील प्रपाद को बड़ा आनंद मिलता है। जितना किताबों का वितरण होगा प्रपाद उतना ही आनंद रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य एक ही है कि किस प्रकार हमारा आचार्यों को प्रीति के लिए किस प्रकार वो संतृप्त हो जाते, उसी का काम हम करना चाहिए, उनका प्रीति के लिए काम करें, ताकि उनको वो जब वो आनंद रहते हैं, हमारे से संतुष्ट रहते हैं, भगवान भी हमारा कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं। हम भगवान को देखने के लिए यत्न कभी नहीं करना चाहिए, भगवान प्रपाद लिखते भी है, कभी भगवान को देखने के लिए यत्न मत करो, ऐसा कार्य करो भगवान तुम्हें देखने के लिए आ जाए। हम वो काम करें जो हमारा गुरु प्रसन्न हो जाए, वो काम करें, फिर बाकी भगवान भी प्रसन्न हो, हमारा भक्तों का सेवा कर रहे हैं उनको अवश्य मैं देखना है। इसलिए ये समय को पूरा लाभ उठाते आप सभी, हमेशा आप टेम्पल पर लास्ट ईयर फर्स्ट सेकंड आया था नहीं,
جو ٹیمپل سیکنڈ آیا تھا نا، فرسٹ دلی ٹیمپل آیا تھا، سیکنڈ آیا تھا، اس کا پرائز وترن میں مایا پور میں تھا، میں گوپال کرشن کو سم مہاراج میں. اور اسی پرکار آپ کریں، بھگوان پرپاد بھی پرسن رہیں گے، ہری بھی پرسن رہے گا. تو آج کا چرچا میں پریہ ورت کا جب بن جانے سے پہلے جتنا بھی راج اپنا راج کو بھاگ کر کے کس پرکار سیماؤں کو نردھارت کیا وہ بتایا، اس کا پشچات ہوئے اپنے پتروں کو دے کر ون کو پرستھان کرتے ہیں. یہیں پر سماپت کرتے. کسی کوئی پرشن یا آلوچنا؟ سمت کریں. سیمت بھوت پران کی جائے، جگت سلا پرپاد کی جائے، انت کوٹ ویشنو برند کی جائے.